नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ बैठक में श्री चौधरी ने ये निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री बैठक में उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद ही नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है। इसमें भुगतान नगद या यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे वहां पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से।
ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031-829-356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2,174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार बीपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉ विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल के टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग चार दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना की कृषि अनुसंधान परिसर में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसायटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।